अध्याय सात। शिखर एक जीवनी लालित्य की अंतर्वस्तु और आत्मानुभूति का विलक्षण स्थापत्य। रेवती रमण। अज्ञेय मूलतः तो कवि है, इसमें दो मत हो ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने गद्य भी आधे नहीं पूरे मन से लिखा है। खासतौर से एक उपन्यासकार के रूप में अपने प्रथम प्रयोग से ही जो ख्याति उन्होंने अर्जित की, यह कम रचनाकारों को मिलती है। प्रसंगवश याद आते हैं फणीश्वरनाथ रेणु और श्रीलाल शुक्ल, रेणु का मैला आंचल और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। ऐसी पुराण कलात्मक कृतियां हैं जिनकी ऊंचाई को ये लेखक अपने परवर्ती कथात्मक प्रयोगों में छुपाने में अक्षम रहे। यही बात अज्ञेय की शिखर एक जीवनी किताब के बारे में कही जा सकती है। उनकी इस किताब को उनके समकालीन डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय से लिखे प्रशंसा के मामले में अत्यंत कृपण आलोचक ने भी प्रायः सर्वांगपूर्ण कृति कहा था। ये उन्हीं के शब्द हैं, सिंगल एनोटेट कामा। शिखर एक जीवनी अज्ञेय की वह प्रौण कृति है जिसने उन्हें हिंदी उपन्यासकारों की अगली पंक्ति में बैठा दिया है, और उस पंक्ति में भी प्रकार वैचित्र में ये सर्वथा अकेले हैं। यूनाइटेड कामापन। संदर्भ समीक्षा के संदर्भ पृष्ठ 102। डॉक्टर उपाध्याय की स्थापना में बड़ी ताकत है। यह स्थापना अज्ञेय विरोधी विचारधारा के लेखक की स्थापना है। नदी के द्वीप से सालों पहले अज्ञेय की केवल एक कृति आलोचकों के सामने रही है, जिससे उपन्यासों के अनुक्रमण द्वारा उनका अध्ययन असंभव रहा है। शिखर एक जीवनी वस्तुतः ग्रीकों की देवी मिनर्वा की भांति अपने विकास के स्तर प्रस्तुत नहीं करता, सर्वथा प्रौढ़ असाधारण सुगठित रूप में हमारे सामने आता है। डॉक्टर उपाध्याय का अनुमान है कि अज्ञेय केवल शिखर एक जीवनी लिखकर ही कलम धर देते तो उनकी ख्याति कुछ कम न होती। मैंने डॉक्टर उपाध्याय की स्थापनाओं का स्मरण इसलिए भी किया है कि वे हिंदी के उन विचारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अज्ञेय की विचारधारा और परवर्ती लेखन के विरोधी रहे हैं, किंतु उनकी कलात्मक सजगता की मुक्तकंड प्रशंसा भी करते रहे हैं। अज्ञेय की नैसर्गिक कलाकार की विलक्षण प्रतिभा को स्वीकार करने पर भी उनकी रचना दृष्टि से असहमति शिखर एक जीवनी के संदर्भ में भी उतनी ही तीव्रता से महसूस की जाती रही है, पर डॉक्टर उपाध्याय इसके अपवाद हैं तो इसलिए कि वे अज्ञेय को निकट से जानते थे और उनकी सामर्थ्य को अनदेखा करने की कूटनीतिक बेईमानी नहीं कर सकते थे। अज्ञेय में सृजन की जो सच्ची और स्वाभाविक क्षमता थी, विरोध या समर्थन की सतही राजनीति से उसे प्रभावित नहीं किया जा सकता था। बहरहाल, शिखर एक जीवनी के प्रसंग में सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि यह जीवनी है या उपन्यास। निर्णय सरल कार्य नहीं है। जीवनी आमतौर पर वास्तविक व्यक्तित्व की होती है। शिखर अवास्तविक नहीं है, तथापि वह अज्ञेय का पर्याय नहीं है। वह अज्ञेय का प्रतिरूप हो सकता है, वह है भी, परंतु यह वही कह सकता है जो अज्ञेय के जीवन वृत्त से परिचित हो। जो अपरिचित है वह उपन्यास मानकर ही पढ़ेगा। वास्तविकता का आभास देने वाली यह काल्पनिक कथा एक उत्कृष्ट उपन्यास बन सकी है तो इसका कारण है इसके आधार का मनोवैज्ञानिक होना। यह शिखर नामक पात्र का आत्मावलोकन है, एक ऐसे पात्र का जिसे फांसी लगने वाली है। अपने जीवन कांत सामने देखकर शिखर अपने अतीत जीवन का प्रत्यावलोकन करता है, या कहें शिखर के बहाने अज्ञेय अपने लेखकीय वैशिष्ट के सरोकारों की गहरी छानबीन करते हैं। इसके केंद्र में चंद्रशेखर पंडित का चरित्र है, एक संश्लिष्ट चरित्र जिसे समग्रता में आंकने का प्रयास अज्ञेय ने किया है। इस सतर्कता के साथ कि स्वयं उनका व्यक्तित्व लोक विरुद्ध प्रतिगामी अथवा अनैतिक न मान लिया जाए। गहरे रचनात्मक स्तर पर इस चरित्र की संश्लिष्टता में मंच का प्रकाश है तो नेपथ्य का अंधेरा भी कम घना नहीं है। शिखर अज्ञेय का प्रतिरूप, उनका समान धर्मा समझा जाएगा, यह बोध लेखक को आद्यंत सजग रखता है, बावजूद इसके कि उसकी गिरफ्त से कथानायक कहीं छूट नहीं पाता। अज्ञेय इसमें आत्मबिंब को पूरी तरह साफ सुथरा दिखाने का आग्रह नहीं रखते। अपने आग्रहों में मुक्त नहीं होने के कारण कथात्मक गद्य में जो एक खास तरह की तटस्थता विवरण के स्तर पर अपेक्षित होती है, अज्ञेय उसे आहत करते हैं। इससे इस कृति में वस्तुनिष्ठ और आत्मपरक के बीच एक खास तरह का द्वंद्व और तनाव लक्षित होता है। अवश्य इसमें कवि अज्ञेय की निजता अप्रतिम रूप में उभरती है। इस किताब के सृजन प्रक्रिया में कलाकार की आत्मान्वेषण की प्रवृत्ति का विशेष योगदान है। एक बुनियादी विशिष्टता जो समृद्ध वस्तुनिष्ठ समीकरण के बावजूद लीक से हटकर कुछ कर गुजरने या लिख जाने की कोशिश में झलकती है। यह मात्र संयोग नहीं कि शेखर और अज्ञेय के व्यक्तित्व विकास की स्थितियां मिलती जुलती हैं। शेखर लगभग वही है जो अज्ञेय है। सिंगल इनवर्टेड कॉमा, अपने से भागते रहने की, निरंतर अपने को ही केंद्रित किए रहने की, इनवर्टेड कॉमा बंद, प्रवृत्ति दोनों में है। भटकाव भी प्राय निरुद्देश्य भटकाव के प्रतीत लिए, क्योंकि इसके भी यांत्रिक और फार्मूलाबद्ध हो जाने की स्थिति से अज्ञेय बचना चाहते हैं। अपने क्रांतिकारी जीवन के अनुभवों के इस कृत्य में जगह देते हुए वे उसे गौरवान्वित नहीं करते, बल्कि एक सीमा में शेखर को मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की रूढ़ी से बाहर निकाल ले जाने में वह सफल हुए हैं। इसमें कवित्व की बाधा है और इतिवृत्त का विकसनशील स्वरूप झलकता है। इसमें सिंगल नेटवर्क कामा, घटना और चिंतन, क्रांति और कल्पना, वैयक्तिकता और सामाजिक संवेदना, बौद्धिकता और रोमांटिक भावावेश सभी एक साथ विशाल चित्रपट पर अवतरित होते हैं। घटनाएं वेग से देश और काल के विस्तृत कैनवास पर एक के बाद एक सरकती चली आती हैं, पर विस्तृत होने के लिए नहीं, हमारे हृदय की गहराइयों में बैठती हुई और उनका अंकन, उनका अविरल विघटन कुछ इस अनायास चेष्टा से हुआ है कि छोटी छोटी सभी घटनाएं अपनी अपनी स्थिति में अपने अपने स्थल पर अत्यंत मार्मिक हो उठती हैं। झेलम की बाढ़, रागनी का अनुराग और प्राकृतिक भावुक आकर्षण, फांसी की कोठरी सभी एक पिच पर हैं, समान मात्रा में चोट करते हैं और उनका अंकन जिस कुशलता और साहस से हुआ है और साहित्य में अपना स्वानी नहीं रखता। नोटेड कामबंद, साहित्य के संदर्भ पृष्ठ संख्या 103। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने अत्यंत संक्षेप में ही शिखर एक जीवनी का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन किया है। उनके अनुसार इसमें व्यक्ति चरित्र केंद्रीय है, किंतु इसके चित्रण में व्यक्ति और परिवेश की जो तीखी तकराहट हुई है उसमें समाज की वे सारी रूढ़ियाँ आ गई हैं, वे सारी तर्क विरोधी सामाजिक कुरीतियाँ आ गई हैं जिनका वर्णन एक बड़े साहस की मांग करता है। इसमें व्यक्ति पूर्ण नहीं है, लेखक ने उसका बचाव नहीं किया है, गहरी आंतरिक संलग्नता के बावजूद उसे खुला छोड़ दिया है। शिखर का व्यक्ति चरित्र रूढ़ अर्थ में व्यक्ति चरित्र नहीं रह गया है, वह टाइप भी नहीं है, पर कई बार वह टाइप लगता है, जिसका मुख्य कारण है इसका अज्ञेय का प्रतिरूप होना। शिखर एक जीवनी के प्रकाशन के इतने दिनों बाद अज्ञेय का व्यक्तित्व निजी विशिष्टता में सुपरिचित होने के कारण, कथानायक होकर भी यदि वह अज्ञेय के व्यक्तित्व को अतिक्रांत नहीं कर पाता तो इसमें नामकरण का औचित्य निहित है। यह किताब शिखर के जीवनी होने में अज्ञेय का विकास समझने में हमारी सहायता करती है। इससे मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेखन की परंपरा को नवीन का वास्तविक प्रकाश मिलता है। यह नया इस अर्थ में है कि चरित्रों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के बावजूद चित्रण इसका एकांगी नहीं है। शिखर के व्यक्तित्व में जो भटकाव है उसके मूल में यौन वर्जना का परिवेशगत यथार्थ है, पर कुल मिलाकर जॉर्ज लुकाच के शब्दों में सिंगल इनवर्टेड कॉमा, उपन्यास की मनोवैज्ञानिक धारा यदि मानव व्यक्ति की समग्रता के चित्रण को क्षति पहुंचाने वाली है, इनवर्टेड कॉमा बंद, तो यह बात शिखर एक जीवनी पर घटित नहीं होती। अकारण नहीं कि इस उपन्यास की भाषा में एक अनोखी चमक है, अपने प्रति और शायद इसलिए कथावस्तु के प्रति ईमानदारी ने ही यह चमक पैदा की है। इस अकेली किताब के कारण अज्ञेय हिंदी की विशिष्ट गद्य शैलीकार मान लिए गए। यह बहुत कुछ इसकी भाषिक चमक के कारण हुआ है। भाषा की चमक शिखर एक जीवनी के गद्य काव्य होने में नहीं, कवि का गद्य होने में निहित है। पूरी संरचना के भीतर एक विलक्षण कवि व्यक्तित्व झलमला रहा है, जो एक साथ ही बंद भी है और खुला भी। सिंगल एनोटेड कॉमा। शिखर एक जीवनी की दूसरी भाग संघर्ष के प्रथम खंड में शिखर के छात्रावास का संस्मरण है। वहाँ अपनी विशिष्टता के दबाव में सबसे खिंचा हुआ शिखर एक विषण औदास में अपने कमरे में बैठकर दुर्दम अभिमानी घोड़े की तरह अतीत की मिट्टी खोदने लगा और चाहने लगा कि पहले की भांति ऐसे समय में अपने को सांत्वना देने के लिए गद्य में या पद्य में कुछ लिखी। शिखर ने सांत्वना की खोज छोड़ दी, गद्य और पद्य का मोह छोड़कर वही लिखना आरंभ किया जो उसके मन में बीत रहा था। यद्यपि वह लिखकर सृजन का सुख नहीं, केवल परिचित अनुभूति के तिक्त रस से ही पन्ने रंग रहा था, तथापि उसका मन शिक्षित और विकसित होता जा रहा था। धीरे धीरे उस पर यह ज्ञान या विश्वास हावी होने लगा कि उसके बारे में वह लिख रहा है जो पुरुष और स्त्री उसे घेरे हुए हैं। वे सदिच्छाओं के बलहिंज पुंज हैं, उनमें सत्कामना है लेकिन कामना पर्याप्त नहीं है। यूनाइटेड कॉमन पृष्ठ 20। शिखर। शिखर स्वयं को अपने लेखन का सर्वश्रेष्ठ विषय मानता है। उसका स्व समृद्ध है, उसकी पृष्ठभूमि क्रांतिकारी है, यथार्थ के स्तर पर सर्वसम्मत समझ की अवधारणा को चिढ़ाने वाली है। तथापि एक लेखक के रूप में वह अपने को सामाजिक क्रांतिकारी नहीं मानता और जो ऐसा समझते हैं उन्हें वह किशोर मोह से ग्रस्त कहता है। वह समझ सका है कि सिंगल एंड कमा लेखक अपने सिवा कुछ को नहीं बदला। उसकी यह समझ बहिर्मुखी सामाजिक अपेक्षाओं पर कुठाराघात करती है, क्योंकि मार्क्स ने कहा था, द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्टेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट हाउ एवर इज टू चेंज इट। अज्ञे अपनी रचनाओं से बदलाव के अपेक्षाओं को जितना निराश नहीं करते जितना अपने वक्तव्यों से। उदाहरण के लिए पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को संवाद के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि सिंगल एनोटेड कॉमा, वे एक आतंकवादी दल का मन कैसे बनता है? शिखर की रचना इसी से हुई है। अज्ञेय आतंकवादी दल से संबद्ध रहकर भी कन्विंस आतंकवादी नहीं रहे। उनकी इस बात में गहरी दिलचस्पी रही कि आतंकवाद का दर्शन अपर्याप्त प्रतीत हुआ। उन्होंने इसमें आगे देखने का प्रयास किया, तब नहिलिज्म और नियतिवाद से आगे जाकर मनुष्य और मनुष्यता में आस्था व्यक्त की। शिखर एक जीवनी की संरचना को अनुप्राणित करने वाला जियां क्रिस्टोफ भी अज्ञेय की रचना दृष्टि में इसलिए शामिल हो सका क्योंकि उसमें भी अनवरत आत्मशोध और आत्मसाक्षात्कार पर जोर है। जियां क्रिस्टोफ में रोला जिस तरह एक आत्मान्वेषी के पीछे चले हैं उसका चित्र खींचते हुए उसी प्रकार शिखर एक जीवनी में अज्ञेय आत्मबिंब के पीछे चले हैं। यूनाइटेड कॉमा पर दोनों में एक अंतर भी है। सिंगल यूनाइटेड कॉमा, क्रिस्टोफ में सर्वत्र उपन्यासकार अन्य पुरुष में लिखा रहा है। शिखर का रूप उत्तम पुरुष में लिखी गई आत्मकथा का है। यूनाइटेड कॉमा आत्मनिपद संख्या 67। शिखर एक जीवनी की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है कि सिंगल यूनाइटेड कॉमा, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है। यूनाइटेड कॉमा पर यह प्रयास कितना सफल हुआ है कितना असफल इससे कहीं बड़ी बात है एक बहुमुखी प्रतिभा के आत्मावलोकन का विजन में रूपांतरण। उपन्यास के स्थापत्य में वो आत्मावलोकन में सब कुछ अपेक्षित और संशोधित होकर ही नहीं आया है, शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इससे कथानायक का चरित्र अधिक विश्वसनीय बन पड़ा है। अगर लेखक की स्वीकारोक्ति में संदेह की कोई बात नहीं है कि शिखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी नहीं है, लेकिन यह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसकी महत्ता इसमें है कि सिंगल इनपुट कामा उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है। इनपुट कामा शिखर एक जीवनी निस्संदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम दस्तावेज है, रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग्स। इसके साथ ही यह उस व्यक्ति के युग का प्रतिबिंब भी है, उसमें आगे का समाज और युग भी मुखरित हुआ है। लेखक ने इसे तीन भागों में पूरा करने की बात कई बार कई तरीके से कही है, किंतु अब तक भी उसके दो ही भाग प्रकाशित हुए। इसका पहला भाग सन 1939 और दूसरा भाग सन 1943 में छपा था, परंतु वास्तव में उनका एक प्रारूप बहुत पहले लिखा गया था और सारा एक साथ ही लिखा गया था। पहले भाग में शिखर का बाल्यकाल वर्णित है और सामाजिक संदर्भ बहुत ही प्रारंभिक रूप में है। दूसरा भाग उपन्यास की संरचना के मेल में है और स्वातंत्र जैसी राजनीतिक चीज के व्यापक सरोकारों को उदग्र रूप में प्रस्तुत करता है। शिखर एक जीवनी के प्रथम भाग में शिखर की कहानी अज्ञे अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं का कलात्मक विवरण देते हैं। इसमें वर्णन यथासंभव मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी हो सका है। आत्मावलोकन की शुरुआत स्वगत के ढंग पर प्राय नाटकीय प्रतीत होती है। इनोटेड कामा फांसी, यौवन के ज्वार में समुद्र शोषण, सूर्योदय परजनी के उलझे हुए और घनी छायाओं से भरे कुंतल, शारदीय नभ की छटा पर एक भीम काय काला बरसाती बादल, इस विरोध में, इस अचानक खंडन में निहित अपूर्व भैरव कविता ही में इसकी सिद्धि है। सिद्धि कैसी, काहे की, मेरी मृत्यु की क्या सिद्धि होगी, मेरे जीवन की क्या थी। यवनिका उठती है और गिर जाती है, पर्दे आते हैं और बदल जाते हैं, किंतु यवनिका प्रत्येक आक्षेप, पर्दे का प्रत्येक परिवर्तन अपने अवसान में लीन होकर भी नाटक के प्रवाह में एक बूंद और डाल जाता है। एक बूंद जो स्वयं कुछ नहीं है, किंतु उसके बिना उस प्रवाह में गति नहीं आ सकती, जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। नोटेड कामन शिखर एक जीवनी भाग एक पृष्ठ 15। शिखर के स्वगत संलाप में गहरी प्रश्नानुकूलता है, अस्तित्व को मत डालने वाली प्रश्नानुकूलता। यह आत्मपरक होने पर भी रचनात्मक है, सामाजिक है, सर्जन संवेद्य है, सामाजिक है। तत्क्षण बाद ही यह वाक्य आता है, सिंगल इनपुट कामा, मैं अपने जीवन का प्रत्यावलोकन कर रहा हूँ, अपने अतीत को दोबारा जी रहा हूँ। इनवर्टेड कामा बंद। प्रसंगवश यह जान लेना जरूरी है कि अज्ञे को फांसी की सजा नहीं मिली थी, परंतु जब एक रात उन्हें पुलिस बंदी बनाकर ले गई, उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से उनकी कहा सुनी और थोड़ी बहुत मारपीट भी हो गई, तो उन्हें लगा कि जीवन की इति शीघ्र होने वाली है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि फांसी का पात्र न होने पर भी यही भवितव्य उनके सामने है। इस मानसिक यातना ने उन्हें दृष्टा बना दिया है। उन्हीं के शब्दों में सिंगल इनवर्टेड कॉमा, मेरी स्थिति मानो भावानुभावों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या के रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है, तो इस जीवन का मूल क्या है, अर्थ क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए। इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के यातना के मर्म भरी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा, एक निजी और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ सुलझ कर हाथ में जाने लगे। इनवर्टेड कॉमा बंद। सिंगल इनवर्टेड कॉमा, पांव फटने तक सारा चित्र बदल गया। इनवर्टेड कॉमा बंद। तब अमृतसर जेल में केवल 4-5 दिनों में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति के भीतर 3 100 पन्ने शिखर एक जीवनी की नींव बने। इसमें शिखर प्रत्यावलोकन का प्रस्थान बिंदु फांसी है, जीवन की समाप्ति का भवितव्य। इस प्रस्थान में पीछे की ओर जाना एक स्वाभाविक शिल्प है। इसमें सबसे पहले आती है सिंगल इनपुट कामा, जिसे हार पछता कर कथानायिका का दर्जा देना पड़ा है। हार पछताकर, इसलिए कि उसमें उपन्यास विनायिका बनने की योग्यता नहीं है। यह बात अलग है कि शेखर की दृष्टि में शेखर का होना अनिवार्यतः शशि के होने को लेकर है, ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना शान के पूर्व की कल्पना है। शशि वह शान है जिस पर शेखर का जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है, जिस पर मज मज कर वह कुछ बना है। नोटर कहाँ पर शशि शेखर की बहन लगती है, लेकिन सरस्वती की तरह सगी नहीं। इसमें उसके प्रति शेखर का सामीप्य बढ़ जाता है मैत्री के स्तर पर। शशि के साहचर्य में शेखर के विद्रोही मन को आश्रय मिलता है। सिंगल नोटर का मन शशि गाती है, उसकी आवाज में अलंकार नहीं है, कलावान की बारीकियां और उसकी मनमोहक छलना नहीं है। उसमें है एक प्राणमय दीप्ति, शरतकाल में सेकी हुई आँख की मीठी गरमाई। इसमें है बेला के स्वर का घनत्व, उसमें है उषा के समय दूर पहाड़ पर बसती हुई खिंची बीन की तान। नोटेड कामत शिखर के भीतर शशि का संगीत सुनकर कुछ जगता है। रहस्यमय वह एक सम्मोहन की तरह छान कर उसे दिखाता था वीरत्व और रण प्रांगण के उन्मत्त स्वप्न। उसके भीतर जागती थी एक पवित्रतम वस्तु की चेतना, जिसके लिए वह जिहाद करने को प्रस्तुत होता। शशि शेखर का आद्य बिंब है, एक ऐसा आद्य बिंब जो उसे कम से कम दो स्तरों पर तो समृद्ध करता ही है। पहले स्तर पर उसके जीवन में क्रियाशीलता के उफान में यह प्रेरणा छलकी पड़ती है, उसे विद्रोही बनाती है, और दूसरे स्तर पर सृष्टि के सौंदर्य को वह प्रतिबिंबित करती है। यह भी कि शेखर के मस्तिष्क का हृदय उसका कभी जागता था शशि की हंसी से। शशि की हंसी शेखर को कविता से परे प्रतीत होती है, उसे सुनकर वह चुप हो जाता। उसकी कल्पना देखती थी नदियों के जलप्रपातों के चंद्रोदय के समुद्र के व्योम गंगा के दृश्य, और फिर चुपचाप लौट आती थी उसी हंसी को सुनने। उसमें अद्भुत आकर्षण था, मेघाच्छन्न आकाश, प्रकाशहीन सायंकाल, पवन अचंचल, चंचला भी अदृश्य। शशि की संरचना में अज्ञे किंचित भी आदरुक नहीं लगते। शरतचंद के पाठकों को की सुपरिचित प्रिय नारी है वह। इसमें थोड़ी नवीनता है तो यही कि वह रिश्ते में शेखर की बहन लगती है। इस तथ्य को स्वयं लेखक ने भी इतना तुल दे दिया है कि शशि शेखर के राग सूत्र को फ्रायड की दृष्टि से देखने की व्यवस्था हो जाती है। शेखर एक जीवनी के प्रथम खंड में जो किंचित उलझाव आ गया है, इसका कारण भी यही है, मनोवैज्ञानिक यथार्थ का फैला हुआ वातावरण जो लेखक की स्वानुभूति से अधिक पुस्तकीय संसर्ग का परिणाम है। इसकी प्रासंगिकता से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस स्थापत्य के निर्माण में लेखक दिलचस्पी ले रहा है उसे समझाने के लिए बालक शेखर के क्रमशः किशोर में परिणत होते जाने की अवस्था का कुतूहल और औत्सुक से भरा गतिचित्र उसे प्रस्तुत करना था। इसमें भी संदेह नहीं कि शिशु शेखर की वय के साथ क्रमशः विकसनशील मनोदशा को आत्मानुभूति के संश्लेष में अज्ञेय ने चित्रित किया है, तथापि उनका यह सारा विवरण निश्चय ही मलामिया क्लेन के फ्रीज नामक बालक के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से प्रभावित है। फ्रायड को अज्ञेय मानते हैं और मलामिया क्लेन की तरह ही उन्होंने भी फ्रायड की मान्यताओं को बड़े व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है। खासतौर से शेखर की ईश्वर संबंधी, मानव संबंधी, माता पिता के यौन प्रणय व्यापार संबंधी जिज्ञासाओं में जिस साहस और संयम का परिचय अज्ञेय देते हैं, वह साधारण प्रतिभा के रचनाकार के लिए संभव नहीं है। फ्रायड की मान्यता के अनुरूप ही उन्होंने शेखर के चेतना विकास के मूल में यौन भावनाओं की सक्रियता दिखाई है। शेखर में यौन चेतना शुरू से ही सक्रिय है, और जिस सामाजिक परिवेश में वह विकसनशील दिखाया गया है वह यौन वर्जनाओं का निवेदित परिवेश है और उसकी सहजता को कुंठित करने में लगा है। शेखर का अपने पिता के प्रति उपासना का भाव उसकी असाधारणता के कारण है। अपने आवेश में उसे आतताई लगते हैं, फिर भी यह मनोविज्ञान की भाषा में उसका यूडियस कॉम्प्लेक्स है। माँ के प्रति शेखर की विरक्ति का प्राकृतिक आधार है। संक्षेप में कुल मिलाकर पारिवारिक संबंधों के बीच शेखर का विकसनशील व्यक्तित्व परिणति को तर्कसम्मत आधार देने के लिए रचा गया है। इस प्रक्रिया में ही शेखर के जीवन में कई स्त्रियां आती हैं, शशि, सरस्वती, शारदा, शांति आदि। इन नारी चरित्रों में पर्याप्त भिन्नता और वैविध्य है, पर दूर तर और देर तक शशि ही शेखर के साथ है, बल्कि दूसरा खंड शशि की मृत्यु के साथ एक खास तरह की त्रासदी में परिणित हो गया है, अपने अधूरेपन में संपूर्ण की झलक देता हुआ। सिंगल नोटेड कमा, छाया तुम्हें भूलने नहीं जाता, तुम साथ चलो, पहले मौसी के पास और गौरी के पास, फिर आगे। कर्म में विस्मरण नहीं है शशि, कर्म में तुम हो, चिरंतन प्रेरणा चिरंतन, क्योंकि मुक्त और मोक्षदा। नोटेड कमा बंद। दूसरी खंड के अंत में पूर्ण विराम नहीं है, शायद इसलिए भी कि वेदना दर्शन को लेकर के चेतना के स्तर पर अनिश्चय ग्रस्त है। इसमें शेखर एक जीवनी का तीसरा खंड अपरिहार्य रूप से प्रतिष्ठित हो गया है। बहरहाल दूसरे खंड के लगभग अंत में की गई यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है। नोटेड कमा, मैं शेखर की कहानी लिख रहा हूं क्योंकि मुझे उसमें से जीवन के सूत्र पाने हैं, किंतु एक सीमा ऐसी आती है जिससे आगे मैं अपनी और शेखर की दूरी बनाए नहीं रख सकता। उस दिन का भोगने वाला और आज का वृत्तकार दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि अंततः उसके जीवन का अर्थ मेरे ही जीवन का तो अर्थ है, और जो सूत्र मुझे पकड़ने हैं उसके प्रति मैं अनासक्त नहीं हूँ। दूसरा भाग, पृष्ठ संख्या 247। संवेदनात्मक ज्ञान धारा के लेखकों की यह स्वाभाविक पहचान है कि वे अंतर्वस्तु से अनासक्त हो ही नहीं सकते, पर अज्ञेय की विशिष्टता कलात्मक सजगता है जो अंतर्वस्तु से अनासक्त का आद्यंत तनाव झेलती है। इस कृति में वस्तुनिष्ठ और आत्मपरक का द्वंद्व और तनाव विलक्षण है। बहुत कुछ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मकथा की तरह इस द्वंद्व और तनाव में उपन्यास और काव्य की स्थिति और संभावना मूर्त और तिरोहित होती रहती है। क्रमशः एक युजुत्सु निरीश्वरवादी का पुनः पुनः रागमुखी और आस्थावादी बनने का प्रयास शेखर एक जीवनी को अद्वितीय स्थापत्य में ढाल देता है। कविता की भाषा में लालित्य के अंतर्वस्तु और आत्मानुभूति का विलक्षण स्थापत्य।